दृष्ट्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरं माया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिहोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मैषे गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे चतुर्विधा भजन्ति मां जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ परम शब्दे आदरणीय यतिद्वय उपस्थित संगति कल विषय था कि जो सुकृत लोग हैं वो भगवान का भजन करते सुकृतियों की भी चार कक्षाएं बतलाई गई आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी उसमें सबसे पहले आर्त को बतलाया आर्त माने दुखी वो भी भक्त है और सबसे पहले भक्त है भगवान ने कहा वो सबसे पहला भक्त है जो दुख से हमें द्रवित होकर के पुकारता है वैसे जीव और भगवान दोनों आपस में सखा हैं मित्र हैं और एक ही जात के हैं द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष पुरुष अश्वजाति द्वासुपर्णा सयुजा सखाया दोनों सुपर्ण लोग ऐसा मानते हैं कि हम ईश्वर से नहीं मिल सकते हमारे बाप ने दादा ने परदादा ने ईश्वर को पाने की चेष्टा नहीं की ईश्वर मिलता भी नहीं है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये धन वैभव ऐश्वर्य सुखोपलब्धि के साधनों को छोड़ करके भभूति रमाना बिना घर के रहना मान अपमान सहना और परिणाम में पता नहीं ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा शास्त्र की ये बातें बड़ी कपोल कल्पित लगती उतना इतना ढेर सारे लोग संसार को चाहते हैं ईश्वर को कौन चाहता सम्राट होना, चक्रवर्ती होना, राजा होना, धनी होना, ऐश्वर्यशाली होना, मिनिस्टर होना, अफसर होना, इनकी तो बड़ी आकांक्षाएं करते हैं और इन पदों को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं। लेकिन ईश्वर की ओर से बड़ा निराश है व्यक्ति, निराशा पिशाचिनी ने इनका गला पकड़ रखा। शास्त्र कहता है ऐसी बात नहीं, वेद कहता है, ऊंट को खरगोश से मिलना हो तो वैषम्य है, कहां ऊंट और कहां खरगोश। लेकिन हंस को हंस से मिलना हो तो कहां वैषम्य है। दोनों के पर्ण एक जैसे, साजात्य संबंध है, सजाती है, और सजाती से प्रेम होता ही। चेतन जीव भी है, चेतन ईश्वर भी है। कहते हैं सजाती होने से ही कोई प्रेम थोड़े होता है। कौरव पांडव भी तो आपस में थे, लड़ मरे। बाली सुग्रीव भी तो आपस में एक ही थे, भाई भाई थे, लड़ मरे। और भी रावण विभीषण को देखो, बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि सजाती होने के बाद भी आपस में लड़ते हैं। वही परंपरा आज भी है, भाई भाई लड़ते हैं आपस में। ईश्वर और जीव दोनों सजाती हैं, इसलिए प्रेम हो ये कोई आवश्यक, पूर्व पक्षी कहता। वेद कहता है सजाती होने के साथ साथ एक और भी संबंध है, सखाया। दोनों आपस में मित्र हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों मिले हुए हैं, सयुज हैं। दोनों एक जैसे हो तो हो सकता है कि प्रेम न हो। मनुष्य मनुष्य का प्रेम नहीं है, बहुत से सारे ढेर सारे लोग आते जाते हैं, एक दूसरे को कहां प्रेम करते हैं। लेकिन एक दूसरे मित्र हो तो ईश्वर जीव का मित्र है, सखा है। सहे युव खाएते, जिसकी एक तरीके की ख्याति हो, समानता हो। अब दोनों में समानता कहां हो सकती है, ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, सर्वावभाषक है, सर्वावपालक है, सर्वव्यापक है, और जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमत्त है, परिच्छिन्न है, एक देशी है। वो सब कुछ दे सकता है तो जीव बिचारे के पास कुछ भी नहीं। दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है। देखो जब जीव ईश्वर के पास से चलने लगा तो उसने कहा देखो हम आपस में मित्र हैं, तुम तो नहीं भूल सकते हो लेकिन मैं छोटा हूं, हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे साथ एक चीज हम ऐसी दे रहे हैं कि जिससे तुम मुझे भूलोगे नहीं। अवसर आएगा तो तुम याद करो, और वो ईश्वर की नियामत है, ईश्वर की दी हुई बड़ी अच्छी चीज है जो जीव के पास है।
और उसी समय ईश्वर याद आता है। सचमुच ईश्वर की आवश्यकता उसी समय पड़ती है जीवन में, सबको ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। माया के कारण, मोह के कारण, अविद्या के कारण हम ईश्वर को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, संसार के चकाचौंध में फंस जाते हैं, सोचते हैं यही नित्य है, इसको संवार लो, बना लो। ये भूल है, अनादि अविद्या का ये चमत्कार है, माया का चमत्कार है, तुम क्या बनाओगे। देखते देखते आदमी का साथ छूट जाता है जिसको तुम बहुत प्रिय समझते हो ना? तुम्हारे न चाहने पर भी सब छूट जाता है, तुम्हारे न चाहने पर भी मिल जाता है। तो सब प्रारब्धाधीन है, प्रपा निवशन्निधौ भागवत में लिखा है। यहां तो जब जो जितना भी संजोग है प्रपा के तरीके है। प्रपा कहते हैं भारत में गर्मी के दिनों में लोग जल पिलाने की व्यवस्था करते हैं कहीं नहीं, उसको प्रपा कहते हैं। पौसार चलाते हैं, घड़े में पानी भर देते हैं, कोई भी पथिक जाकर के पानी पीता है चला जाता है। गर्मियों के दिन में अभी भी भारत में लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कोई शरबत पिलाता है, कोई ठंडा शीतल जल पिलाता है। तो वो जहां से शीतल जल पिलाया जाता है उस स्थान का नाम है प्रपा। प्रपीयते यस्मिन स्थले इति प्रपा, जहां बैठ करके मनुष्य को तृप्त कराया जाए, जहां बैठने पर मनुष्य को तृप्ति मिले और उसके बाद वो अपना रास्ता ले ले, उस स्थान का नाम है प्रपा। अब वहां कोई कहीं जाने वाला है, कोई कहीं जाने वाला है, सबका उद्देश्य है वहां जा करके जल पीना और फिर अपने अपने रास्ते चल देना। वहां जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, जितने लोग तुम्हारे परिवार में आए हैं वो अपने प्रारब्ध रूपी प्यास को बुझाने के लिए आए हुए हैं, और जैसे प्रारब्ध रूपी प्यास समाप्त होता है न वो एड्रेस बताते हैं, न प्यार जताते हैं, न कहते हैं कि निशान बोला। बोलते हैं क्या? और तुम भी नहीं कहते हो लौट के आना, आओ जो। जाने वाले को कोई बोलता है आओ जो? मालूम है ये पता नहीं कैसे आएगा, गया। तुम कितने विश्वासी हो, कि उस आत्मा को शरीर की दृष्टि मान करके उसे प्यार करते हो, उसे संबंध करते हो, उसे अपना मानते हो, और जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उसको भी भूल जाते हो। और जाता है तो थोड़ी देर रोते हैं, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु भी एक सत्य है, वियोग भी एक सत्य है। जब मोह छूटता है, संबंध टूटता है और वियोग का दुख सामने आता है, तब ईश्वर याद आता है। और ये निश्चित है, इस निश्चित को चाहे किसी भी कारण तुम भुलाना चाहो, संबंध के नशे में, ऐश्वर्य के नशे में, स्नेह के नशे में, प्यार के नशे में, अपने पन के नशे में, मेरे पन के अधिकार के नशे में, ये सब नशा है। जो वस्तु के परिणाम को नहीं बतला पाता है, क्या रहेगा तुम्हारे पास? तुम तो अपने लिए रोने का सामान इतना इकट्ठा कर लिए हो कि इतना तो तुम्हारे आंखों में आंसू भी नहीं है। ढेर सारा सामान, तुम्हें तो रोने की कहां फुर्सत है, फिर भी तुम नहीं रोते हो, इसलिए कि उसे दुख मानते ही नहीं। विचित्र ये हालत है। देखो जो दुख है उसको तुम दुख मानते नहीं। भगवान कहते हैं जब दुखी होता है तो मेरा भगत होता है। मैं तो कहता हूं यहां कोई दुखी है ही नहीं, भगवान को मानने की जरूरत भी क्या। जब दुखी हो ना, वो तो दो मिनट के लिए दुखी होते। एक वृद्ध थे, उनके तीन चार लड़के थे और रोज झगड़ा करते रहते थे। एक दिन आए हमसे, बोले स्वामी जी, हमने कहा, बोला मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। हमने कहा तुम्हारा चेहरा भी ऐसे ही लगता है। अब बड़े अफसर थे वो, रिटायर होके सब लड़कों ने पैसा मांगा, निकाल करके बेचारे का प्रोविडेंट फंड था, मांगते गए। जब पैसा लेना होता है तो ऐसी भाषा में बच्चे बोलते हैं कि माँ बाप द्रवित हो जाते हैं और उसके बाद उन माँ बाप के कुत्ते जैसी हालत करते हैं। इतना मीठा बोलते हैं उस समय तो बस पूछो मत। हृदय का टुकड़ा बन जाते हैं वो। और बाद में वही बच्चे, वही अपने लोग जब पैसे ले लेते हैं तो वो टुकड़ा शीशे का बन करके उनके हृदय में धस जाता है। तब क्या, जब खत्म हो गए। शीर्णे वित्ते कह परिवार है, भाष्यकार ने लिखा है, साफ लिखा है। इन संबंधों की मधुरता का पता तो तब लगता है जब तुम्हारे पास पैसे न हो। देखो तमाशा, पड़ोसी का तमाशा देखो, भाई का तमाशा देखो, पत्नी का तमाशा देखो, माता पिता का तमाशा देखो, सब तमाशा शुरू हो जाता है। नहीं, गृहस्थ आश्रम में न हो उस समय तमाशा देखो, बहू अगर दहेज लेके न आवे तब सास का तमाशा देखो, एक जगह मैंने देखा, पता नहीं कहीं भारत में जा रहे थे, देखा एक स्लोगन लिखा हुआ था, भारतीय नारी का मनपसंद तेल, आगे लिखा था मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल समझते हैं आप लोग, किरासन ऑयल, मतलब जब डाउरी नहीं देते हैं तो बहुत से ऐसे कांड होते हैं कि लड़कियों को जला देते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, हमको जो कहा था नहीं दिया। अब आप सोचो उन लोगों की क्या गाथा है। फीजी में माँ बाप से पूछते कहाँ हैं, फीजी की फिजा ही अलग है। हाँ, झगड़े की बात तो तब होती है जब पूछे ना। वो तो ले आके घर में बैठा देते हैं, माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। अगर माँ बाप को घर में रहना है तो सीधा बहू को स्वीकार कर ले, नहीं तो कहते हैं बहू आ गई, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम बाहर, बहू अंदर सास बाहर। बड़े कठोर लोग हैं, कोई नरम नहीं है। तो उसे मैंने कहा जब तुम्हारे बच्चे इतनी तुमको तकलीफ देते हैं तो तुम ऐसा करो, तुम हमारे पास आ जाओ, यहाँ तो सब व्यवस्था है आश्रम में और तुम्हारी मुझे आवश्यकता है। तुम आश्रम में बैठ करके भजन भी करो और आश्रम का काम भी देखो, पढ़े लिखे। चला गया, 8 दिन आया ही नहीं मेरे पास। एक दिन मैं घूमने गया सुबह के टाइम तो मिला मेरे को। मैंने उसको पूछा कि भाई तुम आए नहीं। बोलो महाराज, अच्छी बात बताने के बदले आप तो घर उजाड़ने की बात करते हो। तुम लोगों को घर उजाड़ने की बात लगती है ना। तो ईश्वर को तो वो चाहेगा जो दुखी हो। तुम दुख मानते ही नहीं तो ईश्वर की आवश्यकता कहां है। तुम्हारी तो आदत बन गई है, अगर दुख न हो तब तुम्हें बड़ा अटपटा लगता है, कमी न हो तो तुम्हें अटपटा लगता है, बिल्कुल घर में शांति हो तो भी तुम्हें बड़ा अटपटा लगता है, 10-15 दिन बीत जाए झगड़ा न हो तो तुम्हें बड़ा अटपटा लगेगा, कुछ टुन पुन होना चाहिए घर में। क्योंकि अशांति को ही तुम सुख मानते हो, संबंधों को तुम सुख मानते हो, प्रियता को तुम सुख मानते हो, प्रियम त्वाम रोदयिष्यति, जहां जहां तुम्हारी प्रियता है वो वस्तुएं छूटेंगी, वो व्यक्ति छूटेगा, वो ऐश्वर्य छूटेगा, वो भावना छूटेगी, वो संस्कार मिटेंगे, तुम दुखी हो। ऐसी परिस्थितियों में भी मनुष्य संसार का ही अवलंबन लेता है, ईश्वर का नहीं, ये विचित्र बात है। दुखों में अगर ईश्वर की चर्चा करे, ईश्वर का स्मरण करे, तो ये तो बड़ी दिव्य बात है। जब ईश्वर से वियुक्त होने लगा जीव, आने लगा संसार में, तो उसने कहा महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, दुख में भी आपका सुमिरन आदमी नहीं करता है, संसार के ही साधनों पर अवलंबित रहता है, वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान तब तक रक्षा नहीं करते हैं जब तक आपकी अनन्य मति न हो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्य विचारिणी विविध देश से वित्वम अरतिर्जन संसदि। किसी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए आपको, किसी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपका मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान उसमें अवतरित नहीं होंगे। और जब तक अपेक्षा है आपके मन में, कुछ चाहते हैं आप, तब तक भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि मन तो फिर वहीं लगा हुआ है। और ये लोग दे भी नहीं सकते, क्या देंगे ये बताइए आप, इनके पास क्या देने को है, कुछ है आप लोगों के पास देने के लिए, क्या है आपके पास? एक आदमी आया हमसे बोला स्वामी जी, हमने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, हमने कहा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं चले जाओ। बोला क्यों? हमने कहा संसार में इतने लोग हैं किसी को दे आओ। बोला बहुत अच्छी चीज है। हमने कहा मुझे मालूम है तुम मेरे पास देने के लिए जो ले आए हो वो कोई अच्छा सा दुख होगा, क्योंकि है ही तुम्हारे पास दुख। दुखों की श्रेणियां आपके पास हैं, सुख किस चीज को कहते हैं? सुख आपके पास है कहां? आपके पास सुख है किसी के पास? इतने लोग बैठे हैं बताओ, कोई बता दे, इतने लोग बैठे हुए हैं कि कोई एक चीज ऐसी तुम मेरे को दे दो भेंट में, हम फिजी से इस बार लेके जाएंगे, ऐसी कोई चीज तुम दे दो जो सुख कारक हो, तुम्हारे पास कोई एक चीज दे दो, महंगी भी मत दो सस्ती दे दो, उसमें क्या महंगा सस्ता क्या होता। लेकिन शर्त यह है कि वो सबको सुखकारी होनी चाहिए, कोई एक चीज तुम बता दो। इतने इतने आप लोग इसमें हर श्रेणी के लोग होंगे, श्रीमंत लोग भी होंगे, मध्यम श्रेणी के लोग भी होंगे, हमारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोज यापन करते होंगे जीवन, हर श्रेणी के लोग। कोई एक ऐसी चीज मुझे दे दो जो सबको सुखकारी हो, वो मैं बड़े प्रेम से ले जाऊंगा, अपने हृदय में उसको रख के ले जाऊंगा। किसी के पास ऐसी चीज कोई एक है जो सबको प्रिय हो, जिससे सबको सुख हो? अरे भाई इतने लोग बैठे हैं, किसी को है? नहीं है, है? श्री राम का नाम हमारे समाजियों से पूछो, चौ श्री राम। जो तुम्हारे श्री राम को नहीं मानते हैं बताओ, हमारे मुसलमान भाइयों के पास जाके बोलो, किसी क्रिश्चियन को सुनाओ। हाँ, मैंने वस्तु की बात की है, प्रेम कोई वस्तु नहीं। कोई प्रेम वस्तु है भाई? है ये प्राउड में से जाके खरीद लाओगे? हमने तो ये कहा कोई एक विषय, आप लोगों का बड़ा अनुभव है। हम लोग तो मांग खाने वाले आदमी, हमारे पास तो अपनी रोटी भी नहीं, हमारा अपना वस्त्र भी नहीं, हमें रहने की जगह भी नहीं, और इसकी आवश्यकता भी हम लोग महसूस नहीं करते, जैसा भी मिल जाए। तुम्हारा तो बड़ा सीमित परिवार है, तुम भूखे रह सकते हो, तुम नंगे रह सकते हो, तुम दुखी रह सकते हो, हम क्यों? हमारे बाप का तो सारा संसार है, तुम्हारे बाप का कहीं थोड़ा बहुत होगा? हमारे पिता ने तो पूरी दुनिया बनाई, पूरी दुनिया का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जो है यशशास्त्रीय, यश श्री मान बड़ाई, जो कुछ भी इस संसार में है वो सब ईश्वरीय है, और हम मानते हैं कि ईश्वर मेरा पिता है। तो पिता की चीज पुत्र की ही तो होती है ना। हम तो कहीं भी चले जाएं, हमें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे शाहनशाह कहीं कुछ लेके नहीं जाता ना, कहीं जा रहे, पता नहीं कहां से आ रहे थे, तो अभी बीच के रास्ते में बोले स्वामी जी ये ले जाओ, रास्ते में खाने को काम देगा। हमने कहा तुम रख लेना, क्योंकि तुम्हें भविष्य का भरोसा नहीं, हमें तो भविष्य का भरोसा है। हम तो जहां जाते हैं वहीं पहले से सब कुछ तैयार, भगवान, सारी सृष्टि हमारी है। भगवत्ता का अनुभव आपने कहां किया? आपने तो परिच्छिन्नता का अनुभव किया। तो आप बताइए, मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, और आप बताइए, अभी बहन जी ने कहा कि प्रेम, इसका मतलब आप लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं, किसी संत को भी? अच्छा चलो, हमें ना सही, फुर्सत में सोचना, और फिर कोई महात्मा आवे तो उसको वो भेंट में चीज दे देना जो सर्वप्रिय हो, वो सुख जो सबको सुख देने वाला हो। यहां सुख नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबको सुख देने वाली हो। आप किसी भी चीज का नाम लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबको सुख दे, है ही नहीं कोई चीज ऐसी। देखो, किसी के शरीर में फोड़ा होता है, जब पकता है ना तो बड़ा कष्ट देता है, और वही फोड़ा जब ऑपरेट कर दिया जाता है, फूट जाता है, तब क्या कहते हैं? आहा, आराम हो गया, है ना? लेकिन घाव तो तब भी रहा। वो जो मंथन का विशेष कष्ट था वो दूर हो गया, कष्ट तो है, कष्ट का थोड़ा कम हो जाना, इसी को आप सुख मानते हैं। और कष्ट जब असह्य होने लग जाता है तो उसी को आप सुख मानते हैं। कष्ट के न्यूनाधिक्यता को सुख बुद्धि से देखते हैं आप, कष्ट तो है पर कम है, इसलिए उसको सुख कहते हैं। और जब वही कष्ट ज्यादा हो जाता है तो उसको कष्ट कहते हैं। विषय कोई भी मनुष्य को सुखकारी नहीं होते अगर अंतःकरण शुद्ध है तो। अंतःकरण शुद्ध है तो आपको विषय की कोई आवश्यकता नहीं, आपके आनंद के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु की आवश्यकता से अगर आपकी प्रसन्नता है तो निश्चित है कि अंतःकरण आपका दूषित है। चाहे अंतःकरण में राग प्रधान है, चाहे मोह प्रधान है, चाहे आसक्ति प्रधान है, चाहे काम प्रधान है, चाहे क्रोध प्रधान है, किसी न किसी दोष दुर्गुण से आप प्लावित आपका अंतःकरण है। अंतःकरण माने मन। निर्दोष जब अंतःकरण होता है तो किसी विषय से सुख की इच्छा होती ही नहीं, वो स्वयं अपने में ही मस्त रहता है। विषय के रहने और विषय के न रहने, व्यक्ति के आने और व्यक्ति के न आने, उसके लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, न उसके लिए कोई शत्रु है और न कोई उसके लिए मित्र है, समह शत्रु।